आपने पिछले पाठ में दो प्रकार के शब्द को पढ़ा है, एक हो गया स्फोटात्मक शब्द और एक हो गया ध्वन्यात्मक शब्द, बैखरी और स्फोट। अब मैंने ये भी समझाया आपको कि वही स्फोट शब्द जो है वह कंठ देश में आकर के बैखरी रूप में अपने को परिवर्तित करता है और वही फिर जो है ना उच्चारण स्थान से उच्चारित होकर के बाहर निकलता है और उस बाहर वाले बैखरी शब्द को वक्ता सुनता है और श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से हृदय देश में जाता है वह बैखरी बात, और फिर वहाँ के स्फोट को वह प्रकाशित कर देता है, उद्बुद्ध कर देता है। और जब वहाँ का स्फोट श्रोता के हृदय देश वाला स्फोट उद्बुद्ध होता है तब जा करके उसको शब्द बोध होता है, अर्थबोध होता है। अब यहाँ 45वीं कारिका से आज शुरू करते हैं कि आत्मभेद तयोः केचित् अस्तित्याहुः पुराणगाः बुद्धिभेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते। यहाँ पर केचित् और एके लास्ट में है, भेदमेके प्रचक्षते, एके और केचित्, केचित मतलब कुछ विद्वान और एके माने एक विद्वान। यहाँ पर एक का एक विद्वान नहीं अर्थ करके एक शास्त्र वाले कर लीजिए, और केचित का भी यही अर्थ करिए कि कुछ शास्त्र वाले। तो यहाँ केचित से पकड़ना है पुराण गाह को, माने पुराणज्ञ, पुराण के जो ज्ञाता हैं या पुराण के जो निर्माता हैं वो केचित शब्द से लिया जाएगा कि केचित पुराण गाह आत्मभेद तयोह इति आहु। तयोह माने द्वयोह शब्दयोह, दो प्रकार के जो शब्द हैं बैखरी शब्द और स्फोट शब्द, इन दोनों में आत्मभेद, आत्म का अर्थ यहाँ पर स्वरूप लेना है कि दोनों में स्वरूप भेद है, माने बैखरी शब्द का स्वरूप अलग है और स्फोटात्मक शब्द का स्वरूप अलग है, ऐसा केचित पुराणगाह आहु, ऐसे कुछ पुराणज्ञ जो हैं कहते हैं। और आगे कहते हैं कि बुद्धि भेदात अभिन्नस्य भेदम एके प्रचक्षते, और कुछ जो विद्वान हैं वो इन दोनों में अभिन्न मानते, इन दोनों को अभिन्न मानते हैं, माने स्फोट और बैखरी जो है आपस में परस्पर अभिन्न है, माने भेद नहीं है दोनों में, लेकिन बुद्धि भेदात भेदम, किंतु बुद्धि के भेद से उसमें भेद मानते हैं, माने अभिन्न भी मानते हैं और भिन्न भी मानते हैं। तो अभिन्न मानते हैं वस्तुतः और भिन्न मानते हैं बुद्धि भेद होने के कारण, ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के समझना है कि कार्य कारण भाव आपने सुना होगा, जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं और जो उत्पादक होता है उसे कारण कहते हैं, और उत्पाद्य उत्पादक में कार्य कारण भाव होता है, उत्पाद्य हो गया कार्य और उत्पादक हो गया कारण। तो ये जो कार्य कारण भाव है इसमें दो तरह के सिद्धांत शास्त्र में हैं। एक सिद्धांत में ये कहा गया कि कार्य जो है वह हमेशा नया उत्पन्न लेता है, और दूसरा सिद्धांत है कि कार्य नया उत्पन्न नहीं लेता है बल्कि जो पहले से कारण में रहता है वही चीज जो है ना उद्भूत हो जाती है, वही चीज जो है प्रकाशित हो जाती है जो पहले से है। इसको आप सरल भाषा में अगर कहें तो कि अभाव से भाव उत्पन्न होता है और भाव से भाव उत्पन्न होता है। तो अभाव से भाव उत्पन्न होता है इसको कहते हैं असत कार्यवाद। क्या कहते हैं? अभाव से भाव उत्पन्न होता है, इसी का नाम है क्या कि असत कार्यवाद। और भाव से भाव पैदा होता है ये जो मानने वाले हैं इसको कहा जाता है सत्कार्यवाद। तो असत कार्यवादी होते हैं नैयायिक और सत्कार्यवादी होते हैं सांख्य दर्शन वाले, वैयाकरण जो है वो भी सत्कार्यवादी ही होते हैं। तो मैंने इसको दो तरीके से समझाया एक तो ये कहा कि जो अभाव से भाव मानता है, अभाव से भाव को उत्पन्न मानता है, उसको हम असत्कार्यवादी कहते हैं। और दूसरा कहा कि जो नया, जो कार्य को नया मानता है, माने नया क्या होता है, जो पहले नहीं रहता है, तो जो पहले न हो और अब नए में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा जो मानने वाला है उसको भी असत्कार्यवादी कहते हैं। और सत्कार्यवादी का क्या है कि भाव से भाव को उत्पन्न मानता है। इनका मानना है कि पहले भी वो चीज़ थी और अभी भी वही चीज़ है, केवल जो है ना, पहले वो जो चीज़ थी ना वह प्रकट नहीं थी, अब वह प्रकट हो गई है। तो सत्कार्यवाद के मत में क्या होता है कि कार्य और कारण भाव, कारण में अभेद माना जाता है, और असत्कार्यवाद में कार्य और कारण में भेद माना जाता है। फिर से सुन लो, सत्कार्यवाद में कार्य और कारण में अभेद माना जाता है, और असत्कार्यवाद में कार्य और कारण में भेद माना जाता है। तो अब आ जाओ कारिका पर। ये जो कारिका में कहा कि केचित पुराण गाह तयो हो आत्मभेदम आहु, कुछ जो पुराण वाले हैं, पुराण पुराणज्ञ हैं माने शास्त्रज्ञ हैं, वो दोनों शब्दों में माने बैखरी शब्द और स्फोट शब्द में स्वरूप भेद मानते हैं, माने कार्य कारण में भेद मानते हैं। आप यहाँ जान रहे हैं कि कार्य और कारण क्या होता है। तो बैखरी और स्फोट जो है, इसमें बैखरी शब्द जो है वह बाह्य शब्द है, और स्फोट शब्द जो है वह आंतर शब्द है, आंतरिक शब्द है। देखिए, एक हो गया बाह्य शब्द, एक हो गया आभ्यंतरिक शब्द। तो इस तरह से स्वरूप में भेद होता है। ऐसा मानते हैं कौन, पुराणज्ञ जो होते हैं। यहाँ पर पुराणज्ञ से आप असत्कार्यवादी को ले लें। मैंने शुरू में देखिए कैसे कैसे मैंने अर्थ किया। मैंने पुराणगाह का अर्थ पहले किया शास्त्रज्ञ, फिर शास्त्रज्ञ के बाद जो है ना, अभी जो मैं अर्थ बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि असत्कार्यवादी। तो ये फाइनल अर्थ है, पुराणगाह माने असत्कार्यवादी ना, कि असत्कार्यवादी जो हैं वो बैखरी शब्द और स्फोट शब्द में आत्मभेद मानते हैं, माने स्वरूप भेद मानते हैं। क्या कैसे, तो बैखरी शब्द को बाह्य शब्द मानते हैं और स्फोट शब्द को आभ्यंतर शब्द मानते हैं। इस तरह से असत्कार्यवादी मानते हैं और दोनों में स्वरूप भेद को स्वीकार करते हैं। और एके प्रचक्षते जो है, इसमें एके से ले लेना है सत्कार्यवादी ना को, जिनका कहना है कि भाव से भाव उत्पन्न होता है। तो इनके अनुसार वस्तुतः जो है दोनों अभिन्न है, स्फोट शब्द और बैखरी शब्द दोनों अभिन्न है, दोनों में भेद नहीं है, केवल बुद्धि के भेद होने से दोनों में भेद भासित होता है। वस्तुतः जो है वह दोनों अभिन्न है। इस प्रकार से दोनों प्रकार का जो है शास्त्र में वचन मिलता है, जिसमें कि बैखरी शब्द और स्फोट शब्द को भिन्न भी मानते हैं और बैखरी शब्द और स्फोट शब्द को अभिन्न भी मानते हैं। उसमें कौन कौन क्या मानते हैं, तो असत कार्यवादी भिन्न मानते हैं और सत कार्यवादी जो हैं वह अभिन्न मानते हैं। अब 46वीं कारिका को देखते हैं। अरणस्थम यथा ज्योति प्रकाशांतर कारणम तदवत् शब्दोपि बुद्धिस्थः, ठीक, तदवत् शब्दोपि बुद्धिस्थः श्रुतीनाम कारणम पृथक। आप लोगों ने कभी देखा सुना होगा कि यज्ञ में जो अग्नि को उत्पन्न किया जाता है वह कैसे उत्पन्न करते हैं, तो शमी काष्ठ होता है, शमी नाम की लकड़ी होती है ना, शनि महाराज की जो लकड़ी होती है शमी काष्ठ, उसमें घर्षण किया जाता है और घर्षण करने से उससे आग निकलती है, और उसी आग से जो है उसी आग को कुंड में डाल करके और फिर जो है उसमें हवन किया जाता है। तो अब यहाँ जो दो जगह आपको जो है ना आग मिलेगी, एक आभ्यंतर अग्नि, एक बाह्य अग्नि। काष्ठ में जो अग्नि विद्यमान रहती है वह आभ्यंतर अग्नि है, लेकिन जब मंथन के द्वारा उस अग्नि को उत्पन्न किया जाता है, वह अग्नि जब प्रकट हो जाती है तो वह बाह्य अग्नि हो गई। यहाँ इस कारिका में जो ज्योति कहा गया है ये अग्नि शब्द के लिए आया है। तो अरणिस्थम यथा ज्योति, अरणि कहते हैं उसी को, समी काष्ठ को, उसमें रहने वाली जो ज्योति है, माने उसमें रहने वाली जो अग्नि है, वह प्रकाशांतर कारणम, अन्य प्रकाश का कारण होती है। अन्य प्रकाश, प्रकाश का अर्थ भी अग्नि ही कर लीजिए, कौन सी अग्नि, बाह्य अग्नि। तो बाह्य अग्नि का कारण जो है वो अरणि में रहने वाली अग्नि ही होती है। तद्वत शब्दोपि बुद्धिस्था, उसी तरह से शब्द भी जो बुद्धि में रहने वाला शब्द है, माने स्फोट शब्द जो है, वही स्फोट शब्द श्रुति नाम कारणम पृथक, श्रुति नाम माने बाह्य शब्दानाम, बाह्य शब्द जो है बैखरी शब्द उसका कारण हुआ करता है, स्फोट ही कारण है और बैखरी शब्द जो है वह कार्य है। और इन दोनों में स्फोट हो गया कारण, बैखरी हो गया कार्य, और इन दोनों में भेद पक्ष और अभेद पक्ष जो इसकी चर्चा पहले हुई थी तो उसी के संदर्भ में यहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पर आया था ना कि वस्तुतः तो अभिन्न है लेकिन बुद्धि के भेद से दोनों में भेद माना जाता है, तो उसी चीज़ को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि वस्तुतः कैसे अभिन्न है। तो कहा कि जैसे लकड़ी में अंदर में रहने वाली जो अग्नि है वही घर्षण के बाद जो बाह्य अग्नि उत्पन्न होती है उसमें कारण जैसे होता है, उसी तरह से बुद्धि में रहने वाला जो स्फोट शब्द है वही स्फोट शब्द श्रुति नाम कारणम पृथक, बाह्य शब्दानाम बैखरी शब्दानाम पृथक पृथक कारणम भवति। अब इसके आगे 47वीं कारिका को देखना है। यहाँ एक सवाल किया जाता है कि जब बैखरी और ये जो है ना स्फोट जो है दोनों अभिन्न है तो फिर घट शब्द से पट अर्थ क्यों नहीं प्रतीत होता है, या पट शब्द से घट अर्थ क्यों नहीं प्रतीत होता है। इसका उत्तर 47वीं कारिका में दिया गया कि वितर्कितः पुरा बुद्ध्या, कि वक्ता जो है पहले बुद्ध्या वितर्कितः, पहले बुद्धि से क्या करता है, वितर्कित करता है, माने विचार करता है, विमर्श करता है, और विमर्श करके क्या करता है, तो क्वचित अर्थे निवेशितः, किसी अर्थ में उस शब्द को निवेशित करता है, माने अर्थ बताने के लिए शब्द को बोलना चाहता है। और फिर कारणेभ्यो विवृत्तेन, और कारण का अर्थ यहाँ पर करेंगे उच्चारण स्थान, तालवादि जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों से विवृत्तेन माने प्रकटितेन, उन उच्चारण स्थानों से प्रकटित होकर के, प्रकाशित होकर के ध्वनि नाशः अनुगृह्यते, वह ध्वनि के रूप को धारण करता है। तो यहाँ पर तात्पर्य ये निकला कि जिस धर्म से युक्त ध्वनि होगी उसी धर्म से युक्त शब्द का जो है ना अभिव्यंजन होगा, और उस शब्द से उसी अर्थ का जो है ना संकेत गृहित होगा, दूसरे अर्थ का जो है संकेत गृहित नहीं होगा। तात्पर्य ये है कि मैंने कभी कहा होगा कि शब्द और अर्थ के बीच में तादात्म्य संबंध माना जाता है, और तादात्म्य संबंध जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ होता है उसी अर्थ का शब्द जो है बोध कराता है। तो यहाँ पर भी ये कहा कि वितर्किता पुरा बुद्ध्या क्वचिदर्थे निवेशिता, कि किसी अर्थ विशेष में बुद्धि के द्वारा जो है विमर्श किया जाता है, किस चीज़ का विमर्श किया जाता है, वही संकेतक रह, संकेत का स्मरण किया जाता है, शक्ति का स्मरण किया जाता है कि अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे शक्ति ही, यही है वितर्किता, माने इस शब्द का इस अर्थ में शक्ति है, ऐसी विवक्षा करके वक्ता बोलता है, बोलना चाहता प्रयत्न बोलने के लिए प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न से तालवादि उच्चारण स्थान के द्वारा वही जो शब्द है स्फोट शब्द वह ध्वनि के रूप में बाहर प्रकट होता है, और ध्वनि के रूप में प्रकट होता है तो क्या अत्व खत्व गत्व इत्यादि ना जो है अकार ककार खकार इन सब के इसके रूप में शब्द का जो है श्रवण होता है। आप याद करिए जो जिसका श्रवण होता है वस्तुतः वह शब्द नहीं है, वह तो ध्वनि है, वह बैखरी है, वस्तुतः शब्द कौन है, वस्तुतः शब्द स्फोट है, लेकिन स्फोट जो है आंतरिक शब्द है, और वही आंतरिक स्फोट शब्द बाहर निकल जाता है तो बैखरी ध्वनि के रूप में बाहर आपको सुनाई देता है। आगे फिर कहते हैं कि नादस्य क्रमजातत्वान् न पूर्वो न परश्च सह अक्रम क्रम रूपेण भेदभानिव गृह्यते। यह जो स्फोट शब्द है ये वास्तविक में अक्रम है, इसमें कोई क्रम नहीं होता। क्रम किसका होता है? जो सखंड होता है ना, जिसके टुकड़े होते हैं उसका क्रम होता है, और जो अखंड है उसमें कोई क्रम नहीं होता है। क्रम होना मतलब पूर्व में होना, पर में होना, ये पूर्वापरि भाव जो है इसी को कहते हैं क्रमिक होना। तो यहाँ स्फोट शब्द जो है उसमें कोई पूर्वापर भाव नहीं होता है। न पूर्वो न परश्च सह, सह स्फोट न पूर्व न च अपर, उस वह स्फोट शब्द जो है उसमें न कोई पूर्व में होता है न कोई पर में होता, वह जो है ना अक्रम है, वह अखंड है। फिर भी चूंकि हमें जो सुनाई देता है वह तो ध्वनि के रूप में सुनाई देता है, और ध्वनि जो है वो क्रम नादस्य क्रम जातत्वात्, नादस्य माने ध्वनि है या बैखरी वाचा, तो बैखरी वाक जो है, बैखरी ध्वनि जो है उसमें तो क्रम जात है, माने वह क्रमिक जात होता है, क्रमिक उत्पन्न होता है। ध्वनि में पूर्व पर होता है, जैसे घट कहेंगे तो पहले घ सुनाई देगा, फिर घ का अ सुनाई देगा, फिर ट सुनाई देगा, फिर ट का अ सुनाई देगा। तो ध्वनि जो है उसमें तो क्रमिकता होती है, लेकिन स्फोट में कोई क्रमिकता नहीं होती। लेकिन वह जो उस स्फोट को तो हम सुनते नहीं है, स्फोट की जब बैखरी ध्वनि के रूप में आता है बाहर तब उसको सुनते हैं। तो ध्वनि में जो क्रमिकता रहती है उसी क्रमिकता का आरोप जो है वह स्फोट में मान करके है, तब जो है कहते हैं कि घटः इति स्फोटः, पटः इति स्फोटः। वस्तुतः स्फोट में कोई क्रम नहीं होता, कोई पहला अक्षर दूसरा अक्षर नहीं होता, वह अखंड है। ध्वनि में ये क्रम होता है, और ध्वनि के ही में रहने वाले ही क्रम को स्फोट में आरोप करके हम और आप जो है व्यवहार चलाते हैं, व्यवहार करते हैं। वस्तुतः स्फोट में कोई पूर्वापरि भाव नहीं होता। यही आपकी 48वीं कारिका में बताया गया कि नादस्य क्रमजातत्वात्, नाद माने ध्वनि जो है वह क्रमिक जात होता है, क्रमिक उत्पन्न होता है। न पूर्वो न परश्च सह स्फोट, न पूर्व न अपर, वह स्फोट जो है उसमें न कोई पूर्व में होता है न कोई पर में होता है। अक्रम, और वह अक्रम होता है, उसमें कोई क्रम नहीं होता। लेकिन क्रम रूपे न भेदमान इव गृह्यते, लेकिन क्रम रूप से क्रमिक रूप से ही वह गृह्यते माने ज्ञायते। अभेदमान इव माने भेद से युक्त की तरह, जैसे ध्वनि। और ऐसा क्यों होता है भेद युक्त की तरह प्रतीत? क्योंकि वह ध्वनि के माध्यम से प्रति ज्ञात होता है ना। तो ध्वनि में चूंकि भेद है, अ क ख ग घ ये सब भेदमान होते हैं ना ध्वनि, तो भेदमान ध्वनि होते हैं, उसी का आरोप करके उसी के कारण से जो है स्फोट को में भी भेदमान की तरह प्रतीत होता है। वस्तुतः स्फोट जो है भेदमान नहीं है। तो आज 48वीं कारिका पर ही ब्रेक करते हैं।